Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Tato Zaduttarataram Tadarupam अनामयम् य एतद् विदु रामृतास्ते भवन्ति अत इतरे दुःखमेव आपयन्ति. यह प्रसंग चला श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरा अध्याय का दसवां श्लोक है. इस श्लोक में यह विचार किया जा रहा है परमात्मा का जो स्वरूप, जिसको जान करके अमृत हो जाता है नहीं बात. ज्ञानी लोग जिसको जान करके अमर हो जाता है, अमर माने अमृत हो जाता है, और जो नहीं जानता है दुख रूपी संसार में, दुख रूप संसार में गिरता है, एक उठता है गिरता है, जानने वाला उठता है और न जानने वाला गिरता है. याद रखना ये सत्संग जो पकड़ेगा वो ऊपर उठेगा, वो कुसंग जो पकड़ेगा नीचे गिरेगा. एक अमृत का प्राप्त होगा अमर हो जाएगा, और एक दुख सागर में भटकेगा. ये दोनों लाइन अलग अलग है, याद रखना. दोनों लाइन एक ऊपर की तरफ ले जाना, ऊपर की तरफ कौन ले जाएगा? सत्संग जो जानता है. और निश्चय की तरफ, संसार की तरफ कौन ले जाएगा? अज्ञान. ये बात बता रहे इसमें. ततो यद उत्तरतरम, उत्तर उत्तरतर उत्तरतम, तरफ प्रत्यय होता है व्याकरण में, तरफ प्रत्यय तरफ. उत्तरतर गुड बेटर बेस्ट पढ़ते कि नहीं आप? एक गुड होता है, बेट होता है, बेटर होता है. ऐसे उत्तर उत्तरतर उत्तरतम आनी बात. कर्ज उस परमात्मा को जो जानता है, किस परमात्मा? कार्य का कारणात्मक ब्रह्म को आनी बात. कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म. तो कारण ब्रह्म को जो जानता है तो उत्तरतरम, तो क्या होता है इसके? उत्तर तर उत्कृष्टतर श्रेष्ठतर महत्तर, महत्तर कहो उत्कृष्टतर कहो उत्तमतर कहो एक ही बात है. केवल तरफ प्रत्यय होता है, तरफ तर तरफ प्रत्यय होता है. तो उत्कृष्ट है यानी बात, जो उसे जानता है ना उत्कृष्ट है. जानने का फल क्या है? तो कहते जिसको जानता उसका स्वरूप क्या है? तो कहते अरूपम. अब सवाल यह, अरूप है तो जानेगा कैसे? तो देखो, केवल अरूप होने से नहीं जानेगा ऐसी बात नहीं है. वायु अरूप है तो वायु को कैसे जानते हो? त्वग इंद्रिय से, अनुवाय ऐसा नहीं होता है. त्वग इंद्रिय अनुष्ण शीत स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम. वायु का लक्षण है अनुष्ण शीत स्पर्श. अनुष्ण उष्ण भी नहीं है और अशीत शीत भी नहीं है. दोनों का बीच का जो स्पर्श है ना, उसका नाम वायु है. तो इसको जानने के लिए क्या त्वग इंद्रिय तुम्हारे साधन है? त्वग इंद्रिय और कोई साधन तुमको है नहीं। अनुष्णा शीत स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम, परंतु वायु रूप तो है नहीं, तो स्पर्श तो बाद में होगा ना, पहले है कैसे मालूम पड़े। तो शास्त्रकार दियो दृष्टांत दिया, एक तो दृष्टांत दिया मंदिर के शिखर का ध्वजा हिलता है, हाँ, वो ध्वजा हिलता हुआ देखकर कहते हो वायु चल रहा है, नहीं बात वाय ना। कहते दलाई लामा कथा कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली में एक तिब्बती का मोहल्ला है, आश्रम है, मंदिर है। गर्मी का दिन था, मई जून का समय था, इतनी गर्मी हुआ पंखा भी नहीं था, पहले पंखा का वो सिस्टम नहीं था, हाँ गर्मी, पसीना 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 हो गया, सब इधर इधर देखे क्यों गुरुजी बैठा है, चूसा नहीं कर सकता। तो एक ने कहा अब हवा चल पड़ी है, तो सुन लिया दलाई लामा ने। तो एक ने पूछा कैसे मालूम, वो कह देखना धजा हिल रहा है। तो दलाई लामा ने देखा और बोला वो पंख वो ध्वजा नहीं हिल रहा, तेरा दिल हिल गया है, समझेंगे नहीं, कथा से दिल हिल गया तब जाकर पंखा ये ध्वजा चल रहा है, देखेगा कि नहीं देखेगा, तुम्हारा मन तो ध्वजा नहीं जाएगा, तुमने देखा कैसे। तो हवा चलती है, इसका निशाना पिपल का पेड़ की पत्तियां, थोड़ा सा यदि अगर हवा चले ना तो फिर फरफराएगा, पीपल का पत्ती जाना सबसे पहले हिलता है, बड़का नहीं हिलता, याद रखना पीपल का हिलता है, ऐसे हमारा दिल कब हिलता है, सामने बिछिया आ जाता तो सामने बिछिया आ जाए ना। अभी समझो आप लोग सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, कोई आग बन करके सुन रहा है, अगर वहां से बाहर आकर कोई डिब्डी भी बजावे तो सब तो आंख होगा, तो दिल हिल जाता है सामने विषय आ जाने से, निमित्त आ जाने से। तो कहते अरूपम, तो अरूप कौन कौन से चीज है, आकाश अरूप है, वायु अरूप है, ये दोनों का नाम रहा है अरूप अमूर्त। दो द्रव्य, एक मूर्त रूप एक अमूर्त रूप। मूर्तम इतत चराचरम, पृथ्वी जल तेज, ये सब मूर्त द्रव्य है, आकाश वायु अमूर्त है, ब्रह्म भी अमूर्त है, याद रखना ब्रह्म भी अमूर्त है, क्यों इसका मूर्ति नहीं, वायु अमूर्त है, आकाश अमूर्त है, और अरूपम समझेंगे ना, अरूप है रूप नहीं है, तो अरूपम केवल वायु अरूप है ऐसा नहीं, बहुत से वस्तु है अरूप है, समझ लेना रूप ही नहीं। तुमको पीड़ा हो रही है, पीड़ा का क्या रूप है, पीड़ा का क्या रूप है, दांत में दर्द हो रहा है क्या रूप है, ये अनुभूत विषय है, ये सब अनुभूत विषय है। तो बहुत से वस्तु अनुभव के द्वारा जाना जाता है, बहुत से वस्तु अनुमान के द्वारा जाना जाता है, बहुत से वस्तु उपमान प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, यानी बहुत से वस्तु शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, बहुत से वस्तु अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। तो संसार में अरूप होने मात्र से ब्रह्म होगा ऐसा नहीं, इसीलिए आगे कहा है अनामयम अरूपम अनामयम, वो तद वह जो कारण ब्रह्म है, क्या चीज है, कैसे है, कैसे केवल अरूप ऐसा ना, अनामयम आमय कहते रोग को, न आमय अनामय। अनामय माने रोग रहित, या रोग शब्द से समझ लेना दुख, रोग शब्द से दुख का है। हा? तो त्रिविधम दुखम, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। यहां तो ऐसे है, पर इसी उपनिषद में है, पहले लिखा, आपको ख्याल है कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं, पंच दुखों का भेगा, पंच श्रोता अम्बोम, पंच दुख जन्य उग्र बकराम, पंच दुखों का भेगा, पहले श्लोक पढ़ा, पहले अध्याय में आया। तो पंच दुखों का भेगम, पंच दुख है, गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मृत्यु दुख, ये पांच दुख हर एक के जीवन में आएगा, इसमें से कोई बच नहीं सकता, याद रखना। गर्भवाद जो दुख है वो हर एक जोनि में मिलेगा, पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव मनुष्य जो भी जन्म लेगा उसके जीवन में गर्भ दुख, और जन्म दुख, जन्म लेते हुए जो पीड़ा होती है, अनिवार्य गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, बुढ़ापा का दुख। अभी बुढ़ापा में जो आएगा, अनिवार्य उसका जो पीड़ा होगी, दुख होगा, वो पांच साल के, दस साल के, बीस साल के बच्चे क्या समझेगा, क्या समझेगा, जब वहां आएगा तब समझेगा, पहले नहीं समझेगा ना, तभी आएगा। वो बुढ़ापा का दुख जो है वो बुढ़ा ही समझेगा, अनुभव करेगा। व्याधि दुख, रोग जनित दुख, आप इस बुढ़ापा में सभी प्रकार के बीमारियां आती है, आती है कि नहीं दुख, तो पंच दुखों का मृत्यु दुख, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, दुख होता है, दुख, ये पंच दुखों का वेग, पांच दुख का वेग है, इन इन समय में ये दुख आएगा, मानी बात। तो यहां कहते हैं अनामयम त्रिविधम ताप रहितम, अनामय आमय रहितम दुख रहितम, आत्मा में तीनों प्रकार के ताप नहीं, ताप कहते गुजराती में बुखार को ताप कहते, ताव आ गया, ताव, तो यह ताप माने गर्मी, ताव आया नहीं, बुखार आया, कौन सा बुखार, आध्यात्मिक बुखार, आदि भौतिक बुखार, आदि दैविक बुखार, तीन प्रकार के दुख आता है। जो तीनों प्रकार के दुख देहधारी को आएगा, जो विधेय होगा, देह रहित होगा, उसको नहीं आएगा। अनामयम यह एतद विदुः, यह माने जो साधक, जो अधिकारी, जो अधिकारी, कौन अधिकारी है, जो अधिकारी होगा, शासकार कहते जो अधिकारी होगा वो जानेगा। एतद विदु अमृतास्ते भवन्ते ही, वे ते अमृता भवन्ते ही, जानने वाला क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। अथ इतरे, इतरे माने भिन्न, उससे भिन्न न जानने वाला, अज्ञानी अभिवेकी, अभिवेकी क्यों नहीं जानता है, इसी बात को आपको मंडक उपनिषद बताया, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमज्जन्तं वित्तमहीन मूढ़ अयम लोको नास्ति पर इति माने पुनर् पुनर्वसम आपद्यते मे। श्लोक याद है, न सांपराय प्रतिभाति बालम, बालम माने अज्ञानी को कहते, बालक किसको कहते, अज्ञानी, क्यों अज्ञानी को बालक कहते, जैसे बालक क्रीडन कह क्रीडंती, खिलौना से खेलता है, जब खिलौना बालक के सामने रख देते हो ना, तो उसका रोना बंद हो जाता है, ऐसे ही समझ लेना पुत्र पुत्र धन दौलत आदि जो खिलौना है, ये खिलौना जब तुम्हारे सामने रख देगा तो तुम क्या करोगे? इसीलिए नचिकेता के सामने रखा था कि नहीं खिलौना? सतायुजा पुत्र पुत्रान विणिस्वा पशु भुवन पशु मस्त निरण्यमस्वान भूमेर महादायतनम वृणिस्व स्वयं सजीव सरदो जावद इच्छसी एतत्तिल्यम जजिवन्य से वरम वृणिस्व वित्तम चिरजीविकाम सो ईमा रामा सरथा सतुरिया नहीं दृशालंबन या मनुष्य एताभि प्रत्याभिचारिश्वाह नसिकता मरणम मानव प्राक्षी ही मृत्यु संबंधी वरदान मत मांग। 100 वर्ष जिसकी आयु हो ऐसे पुत्र मांग ले, पौत्र मांग ले, धन मांग ले, दौलत मांग ले, राज्य मांग ले, साम्राज्य मांग ले, अनिवार्य ये सब मांग ले मांग ले। कितना तेरे को मांगना है जो मांग ले, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक मांग ले, परंतु ब्रह्म विद्या नहीं मांगना, आत्मज्ञान नहीं मांगना। इस ओर से मेरे पास क्यों, इसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जान नहीं पाते। मृत्यु का ज्ञान क्या है? अमृत है, शब्द के नहीं, बालक है बालक, खिलौना से जो खेले, किरणकों से जो कीड़ा करे खिलौना करे, वो बालक। तो संसार के मनुष्य इसीलिए बालक है कि संसार के विषयों से खेलता है। नशाम पराया परलोक संबंधी बात ये सूझता नहीं, बोलने पर भी समझता नहीं, समझने पर भी करता नहीं, मानता नहीं, इसीलिए बालक है। अयम लोको नास्ति परेति मानि, जो कुछ भी है बस यही है, जो कुछ भी है यही है, मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता, याद रखना। जो मरने के बाद रहता मानता है, समझे कि नहीं, मानता है वो बालक नहीं है। क्यों? अस्ति परलोकम इति चेत् वेदः, परलोक है ऐसे तो जानता है, संतम एनम तदो विदुः। तृतीय उपनिषद में बतलाया जो ब्रह्म है ईश्वर है परलोक है ऐसा मानता है उसको संत समझ लेना, यानी बात वो संत है। क्यों? सत को जानने वाला संत है, भले ही परोक्ष रूप में जानता हो, जानता तो है तो मानता तो है ना, मानता तो है ना, वो जब मानेगा तब जानेगा, कभी ना कभी जान लेगा, पहले मानना चाहिए ना। हम मानते ही नहीं परलोक है कि नहीं, तब क्या करोगे उसको, क्या समझाओगे? ऐसे व्यक्ति बार बार मेरे मुट्ठी में आता है वो नचिकेता, समझे कि नहीं? ऐसे व्यक्ति बार बार मेरे मुट्ठी में आता, जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं हमेशा डाल रखता हूं। तो इसीलिए इतरे इतरे दुखम एवं आप जानते, इतरे बारे जो नहीं जानता है, इधर अमृता हम न जाना थे, सा दुखम एवं आप जानते ही वो दुखों के ही प्राप्त होते हैं, बार बार दुखी हो जाता है। इसके भाष्य देख लीजिए, तथा इदम शब्द वाच्य जगत उत्तरम कारणम ततो अत्युत इदानीं ब्रह्मण पूर्वोक्त कार्य कारणता दर्शयन। ब्रह्म जो है कार्य कारणता, ब्रह्मण पूर्वोक्त कार्य कारणता, ब्रह्म का जो है ना ये हिरण्यगर्भ समझ लेना, कार्य कारणता दर्शयन दिखलाता हुआ ज्ञानी नाम अमृतत्व इतरेशम से संसारित्व। देखो भाष्यकार ने यहां लिख दिया ज्ञानियों के लिए अमृतत्व की प्राप्ति, जानना ही अमृतत्व प्राप्ति, याद रखना। और इतरेशम माने अज्ञानी, अज्ञानियों के लिए क्या संसारित्व दर्शयति दिखलाते हैं। अज्ञानी मतलब दो रास्ता है, एक संसार का रास्ता और एक मोक्ष का रास्ता, पर रास्ता चार है, याद रखना, समझे कि नहीं? चौराहे पर खड़े हो, एक रास्ता स्वर्ग को गया, एक नरक को गया, एक मोक्ष को गया, एक संसार की तरफ आया। चौराहे पर खड़ा हुआ लिखा हुआ है, कहाँ जाओगे? वो बिरला एडिटोरियम क्या है, वहां जाएगा ये रास्ता। एक कहाँ जाएगा? चौपाटी में जाएगा। एक कहाँ जाएगा? ग्रैंड रोड में जाएगा। एक कहाँ जाएगा? मालवा हिल में जाएगा। ये लिखा हुआ है। तो हमको पढ़ना नहीं आता तो क्या करूं? तो पूछ लो।